Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. तो इस मंडे क्लास में सबका स्वागत है. तो आज आई नो आप तो पहली बार आए. और भी कोई है जो पहली बार आया आज? हरे कृष्णा, काफी लोग हैं. तो आप सबका स्वागत है. ये सोमवार की क्लास हर मंडे 7:30 से 9 बजे होती है. तो आप सबसे अनुरोध है कि आगे भी आते रहिएगा और भगवद गीता या जो भी अलग अलग प्रवचन होते हैं उससे अपना फायदा उठाइए. तो पिछले सोमवार कौन कौन आया था? तो पिछले सोमवार भी भगवद गीता भी हुई थी या कोई और क्लास थी? कौन सा श्लोक हुआ था? 7:10. क्या श्लोक क्या है? क्या ओके श्लोक नहीं याद तो क्या हुआ? क्या था? डिस्कस क्या हुआ था? हैं जी? श्लोक में तो थोड़ा अलग है. भगवान की शक्तियों के बारे में क्या बताया था? श्लोक में क्या था? हैं जी? ओके. और बाकी किसी को नहीं याद? लगता है बीच में राधा अष्टमी आ गई थी तो सब भूल गए फेस्टिवल के चक्कर में. जीवन मुक्त तो कैसे जीना चाहिए? कैसे रहेंगे दूर? ओके. हैं जी? पके हुए नारियल की तरह. वो कैसा होता? खाने में तो अच्छा होता है कि नहीं? फिर वो सब्जी में अच्छी तरह डाल सकते हैं कद्दूकस करके. कच्चा नारियल नहीं डाल सकते ना भाई. हैं जी? किसने किन्होंने क्लास दी थी पिछले मंडे? विच इज कृष्ण कुमार. क्योंकि वो खुद जो है वो माया से अलग है इसलिए वो ऐसी बातें बोल सकते. मैं नहीं हूं तो इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं बोलू. चलो इस बार श्लोक है 11:07 का. तो पीछे दोहराएंगे. सब लोग लाए हैं भगवद गीता? चलो जो जो भी लाए हैं या जिनको श्लोक याद है दोहरा सकते हैं. बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ. बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ. तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है. भगवान कह रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ये काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है. तात्पर्य में प्रपाद जी लिखते हैं बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं. इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं. अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं. तो आज छोटा सा ही तात्पर्य है. तो भगवान इसमें इस अध्याय में अपने बारे में, अपनी थोड़ी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। सातवां अध्याय जो है भगवत गीता में 18 अध्याय है, पहले से 6 अध्याय जो है कर्मयोग के ऊपर है, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 जो है ज्ञान योग। तो अभी सातवां अध्याय जो है जो भक्ति योग की शुरुआत है, तो भगवान थोड़ा भक्ति योग के बारे में शुरुआत से बता रहे हैं। तो भक्ति योग में भक्ति के लिए जरूरी है कि हम भगवान को समझें, जिसकी हमने पूजा करनी है, सेवा करनी है, उसके बारे में कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान अब जो है अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। सीधा सीधा देखना उनकी कृपा के बिना मुश्किल है कि भगवान श्याम सुंदर रूप में हमें दर्शन देंगे, थोड़ा मुश्किल है। तो भगवान बता रहे हैं कि हम बाकी चीजें देख के कैसे समझ सकते हैं उनके बारे में। जैसे इसके पहले के श्लोकों में आया कि रसो हम अपसु कौन थे या प्रभास में शशि सूर्य प्रणवा सर्वे देशु शब्द के पुरुषम नरेशु, के पानी का टेस्ट जो है मैं हूं, शुद्ध पानी का, बिस्लेरी या एक्वाफीना पानी का नहीं, ये नहीं कहा भगवान, शुद्ध पानी का टेस्ट वो है मैं हूं। और फिर कहते सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। वैसे अगर 15वें अध्याय में पढ़ें जो पुरुषोत्तम योग है, पिछले पुरुषोत्तम मास में ये बताया गया था कि रोज ये 15वां अध्याय जो है पढ़ना चाहिए, तो उसमें बताते भगवान, उसमें बता रहे हैं सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्रमा का तेज, अग्नि का प्रकाश भी मुझसे ही निकलता है। बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो सूर्य का तेज भगवान है, भगवान ना हो तो सूरज में तेज नहीं रहेगा। और चंद्रमा का जो तेज है वो दरअसल सूरज के ही रिफ्लेक्शन से चंद्रमा से तेज निकलता है, वरना चंद्रमा के अंदर अपना कुछ तेज नहीं है। और जैसे 15वें अध्याय में बताया भगवान ने कि चंद्रमा के तेज से ही सारी सब्जियों को जूस मिलता है, सब्जियों में जो टेस्ट आता है, नेक्टर आता है, वो चंद्रमा की रोशनी की वजह से आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में यह भी कहा कि जब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि वो चंद्रमा पे गए और चंद्रमा पे उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उजाड़ था, बियाबान था, कोई वनस्पतियां नहीं, कोई महल नहीं, कुछ भी नहीं, तो बोले जिस चंद्रमा की वजह से सारी वनस्पतियों में जूस आता है उसी चंद्रमा पे कोई सब्जी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले वो चंद्रमा पर गए ही नहीं कभी। तो खैर वो डिस्कशन फिर कभी के लिए। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूरज का तेज मैं हूं। और फिर कहते हैं वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि मैं हूं, हम जो भी बातें करते हैं सुनते हैं ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ध्वनि कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं। पौरुषम ऋषु, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, हम जो भी काम करने के सामर्थ्य रखते हैं, जो भी कैपेबिलिटीज है हमें, किससे आती है? भगवान से, हमें कुछ भी नहीं है। सूर्य की रोशनी एक दिन के लिए बंद करते हैं भगवान, हमारे पास पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर या जितने भी डैम्स हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी रोशनी नहीं हम इतनी जनरेट कर सकते कि पूरे संसार में उजाला कर सके, हो ही नहीं सकता। एक दिन के लिए अगर सूरज को बंद कर दें, हम समझते हैं हम बहुत कुछ है। सूरज की रोशनी ना हो तो समुद्र से पानी जो है भाप बन के उड़ेगा नहीं, बन के उड़ेगा नहीं तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सब्जियां नहीं उगेंगी, हम क्या फैक्ट्रियों के नट बोल्ट खाएंगे? सब्जी नहीं होगी, धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगी, फल नहीं होंगे, हम खाएंगे क्या? और बिना पानी के रह भी नहीं सकते। और फिर भगवान जैसे 15वें अध्याय में बताते हैं कि सब प्राणियों के शरीर में बैठकर अन्न को पचाता भी कौन है? मैं हूं। पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं, उगवाते भी भगवान है, उन शब्दियों को रस भी भगवान देते हैं, उनको पकाने की सामर्थ्य जो है, पकाने की बुद्धि जो है भगवान देते हैं, और फिर पचाते कौन है? वो भी भगवान है। ये है भगवान। और हम इतने ढीठ हैं फिर भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। बुद्धि कौन देता है? वो भी भगवान देते हैं। कुछ करना है कुछ नहीं करना, वो भी बुद्धि कौन देते हैं? भगवान देते हैं। पर हम जो है, हम ये कहते हैं कि हम नहीं मानते इस चीज को। वो भगवान अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी आगे जब अपने विराट रूप का वर्णन करेंगे तब तो और अच्छे से बताएंगे कि मैं कौन हूं। पर भगवत गीता में वैसे तो काफी कुछ बता दिया, पर इतना ज्यादा डिटेल में फिर नहीं गए क्योंकि लड़ाई शुरू होनी है। अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम था दोनों के पास। कहीं आश्रम में बैठ के ज्ञान दे रहे होते तो ठीक है, कुछ समय तक चल सकता था। अभी बहुत थोड़ा सा टाइम है तो अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। वो हमें समझना चाहिए कि क्या बता रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा मैं हूं। तो पृथ्वी में जो सुगंध है, और पृथ्वी में ही सुगंध है, जैसे पीछे आया है कि भगवान की जो आठ प्रकार की शक्तियां हैं, भूमि रप अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। आठ प्रकार की शक्तियां जो है भगवान कहते हैं मेरे से ही आती हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भगवान से आता है। और भूमि ही है इसमें जिसमें सारी सुगंधी होती है, अग्नि जल वायु आकाश में कोई सुगंध नहीं है। तो हम जितनी भी सुगंध लेते हैं सूंघते हैं, चाहे वो गुलाब की हो, कमल की हो, चंपा की हो, चमेली की हो, किसी भी फूल की हो, सब जो है भूमि से आ रही है। और वो सुगंध कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। जितने भी बड़े बड़े मेकअप वाले लोग होते हैं ना, जो सेंट बनाते परफ्यूम्स बनाते हैं, वो कोई अपने से कुछ नहीं बना सकते, निकलती सब पृथ्वी से है, जो कि भगवान की देन है। पृथ्वी भी भगवान बनाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो सुगंध है वो भी भगवान बना रहे हैं। ये है भगवान। पर हम इस चीज को नहीं मानते, समस्या इस बात की है। आगे क्या बता रहे हैं कि अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूं, अग्नि का प्रकाश भी मैं हूं, अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूं, गर्मी जो होती है अग्नि में वो भी मैं हूं। अगर वो गर्मी ना हो अग्नि में तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर पूरी इधर ठंड हो तो कहां रह पाएंगे? शरीर भी गर्म कैसे होता है? अग्नि, अग्नि जो एलिमेंट है हमारे अंदर, अग्नि तत्व है, उसकी वजह से शरीर गर्म रहता है। अगर वो एलिमेंट हटा दिया जाए, जैसे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अगर किसी ने देखा हो किसी को मरते समय, तो उसका शरीर जो है एकदम ठंडा पड़ जाता है, वो अग्नि जो तत्व है खत्म हो जाता है। तो अगर शरीर में अग्नि नहीं है, वो भी एक एक पॉइंट पे आके अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तब भी मर सकता है, एक लेवल पे आके वो अग्नि जो है भगवान कहते हैं मैं हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप मैं हूं। समस्त जीवन जीवों का जीवन कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। फिर अगले श्लोक में जो पिछले हफ्ते हुआ था कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूं, मतलब मुझसे ही बीज, मुझसे ही वो आत्मा आती है। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूं। तो जो भी हम में बुद्धि है, कुछ भी काम करने की योग्यता है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या और कुछ काम कर रहा है, बुद्धि कहां से आती है? भगवान कह रहे हैं मेरे से आती है, मैं हूं वो बुद्धि। और फिर बलवानों, जो आज का श्लोक है, समस्त बलवानों का बल, जो कैसा बल? जो काम और इच्छा से रहित है, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जो शुद्ध है, प्योर है, वो मैं हूं। जो दूसरों की सेवा के लिए लगाया जाता है वो बल मैं हूं। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन को ये समझाने के लिए तुम जो बल जो है अपना सही दिशा में लगाओ। दुर्योधन जो है बल अपना काम के वश में आके लगा रहा है। दुर्योधन का बल भी मैं ही हूं, उसको भी कैपेबिलिटी, उसको भी बुद्धि मैं ही दे रहा हूं। पर जो असली बल है, तुम्हारा जो बल है, क्योंकि तुम लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हो, रक्षा के लिए लगा रहे हो, यह क्षत्रिय का धर्म होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। और फिर आगे कहते हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। काम अस्मि, मैं हूं। क्या काम? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध क्या काम नहीं है? अगर हम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए अगर हम काम या मैथुन करते हैं, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। और संतान उत्पत्ति भी कैसी? ये नहीं कि जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि किसी को गुरु बनने का, पिता बनने का, पति बनने का, माता बनने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पे जो डिपेंडेंट है, अपने पे जो आश्रित है, उनको भक्ति के मार्ग पे या मुक्ति के मार्ग पे नहीं ले जा सकता। अगर वो अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकता तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कपल को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। भागवतम में तो और थोड़ा कठोर भाषा में लिखा है, उसमें लिखा है कि बच्चे तो कुत्ते और बिल्लियों के भी होते हैं, वो तो अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग में नहीं ले जा सकते। अगर हम भी अपने बच्चों को उस मार्ग पर नहीं ले जा रहे तो हमें और जानवर में कोई, हमें और कुत्ते बिल्लियों में कोई फर्क है नहीं। भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो काम है जिससे कृष्ण भावना भावित संतान पैदा होती है, वो काम जो है मैं हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये है धर्म के सम्मत, धर्म के अनुसार काम करना। नेचुरल है कि हस्बैंड वाइफ बच्चा पैदा करने के लिए मैथुन करेंगे, पर बच्चा पैदा करने के लिए, और वो भी कैसा बच्चा? कृष्ण भावना भाव, डिवोटी बनने बनाने के लिए। पर उससे पहले हमें डिवोटी बनना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो कलयुग में क्या है? कलयुग में तो कलो शूद्र संभव, सारे के सारे शूद्र हैं। नाम से हो सकता हम शर्मा हो, गोस्वामी हो, मिश्रा हो, कुछ भी हो, वो उससे ब्राह्मण नहीं बन जाते। कलो शूद्र संभवा संस्कारित भवेद द्विजा। संस्कार से उद्विज या ब्राह्मण बनता है। और पहला संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार। 10 प्रकार के संस्कार बताया गया मनुष्य की लाइफ में। तो पहला संस्कार जो है गर्भ आधान संस्कार, मतलब किसी ऐसी पुण्य आत्मा को गर्भ में एंटर करने के लिए उसके लिए संस्कार होता है। और गर्भ में आने के लिए गर्भ की शुद्धि पहले कराई जाती है मंत्रों के द्वारा, और खासकर कलयुग में तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा गर्भ की शुद्धि होती है। तब जब शुद्धि होती है तो ऐसी सही जगह पे, ऐसे पवित्र जगह पे एक पुण्य आत्मा ही आके रहेगी। इसलिए वो गर्भ रखना, गर्व करना, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। नहीं तो आजकल ये कलयुग में ही है जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि अब बच्चा नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव भी आ गए हैं और फिर गर्भपात भी करा देते हैं। ये कलयुग में ही हो रहा है, पहले नहीं होता था। ये हमारी दशा है कलयुग में। कई बार जानवरों में और मनुष्यों में जब अगर कंपैरिजन किया जाए तो चार एक्टिविटीज जो है सारे जीव करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन करना, बच्चे पैदा करना। तो अगर मैथुन को लेकर अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब आदमी लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि मनुष्यों में थोड़ा दिमाग ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, तो हम जो है गर्भपात भी करा देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज करते हैं। वो मनुष्यों में, जानवरों में नहीं है तो जानवर लोग ये सब नहीं कर पाते। हम कहते हैं वो लोग देखो उनकी बुद्धि कम है। नहीं, इस हिसाब से तो वो हमसे अच्छे हैं, इस हिसाब से मनुष्य से अच्छे हैं, वो गर्भपात तो नहीं कराते। और कितना मतलब कितना घिनौना काम है, एक छोटा सा बच्चा माता के गर्भ में है, माता की शरण में है, और उसको जो है हम गर्भ के अंदर ही जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता और बड़े खुश होकर उसको मार देते हैं उसके अंदर कि नहीं हमें ये टेंशन नहीं चाहिए, हमें ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अभी देखिए ना छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और कोई इनको ही मारना चाहे तो कितना खराब लगेगा। वो एक छोटा सा बेबी है अभी पेट के अंदर है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मार देते हैं। और खासकर अभी मतलब इंडिया में तो पूरे इंडिया में ये होता है जो लड़कियों को मार देते हैं, पता कराते हैं किसी तरह लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो उसको मार देते हैं। अरे ऐसे लोगों के लिए भागवत में बताया गया कि उनको उनको गर्भ से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिलता। जो अबॉर्शन कराते हैं, गर्भपात कराते हैं, उनको फिर अगले कई जन्मों तक गर्भ में ही शरीर छोड़ना पड़ता है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर होते रहते हैं, बाहर की रोशनी भी नहीं देख पाते। वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, भगवान नहीं, कोई जानता नहीं हमने क्या किया। कितना गलत है। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से हम कार्य करें, बलवानों का बल जो काम और इच्छाओं से रहित है वो मैं हूं। तो अर्जुन का बल भगवान बता रहे हैं कि मैं हूं, दुर्योधन का नहीं हूं। पर ये सब चीजें भगवान बता रहे हैं ये हमें दिखाने के लिए कि अगर हम सीधा सीधा भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से उनको समझने की कोशिश करें कि वो हर जगह विद्यमान है, उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उनकी कृपा के बिना जीवन जो है ये जो शरीर चल रहा है ये संभव नहीं है। हमारा जीवन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई कई व्यक्ति होते हैं बड़े पाप कर रहे हैं पर उनके पास बहुत कुछ है और कोई पाप नहीं कर रहा, अच्छा खासा रह रहा है, पुण्य आत्मा है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा गरीब है, तो ऐसा क्यों है, भगवान देख नहीं रहे? भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है पिछले जन्म में उसने कई पुण्य कर्म किए होंगे, इसकी वजह से उसके पास इस जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, पर अब जो पाप कर रहा है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, पक्की बात है। उस घमंड में आके, उस बल में आके, पैसे का बल होता है या शारीरिक बल होता है या मानसिक बल होता है, उसमें आगे अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, नहीं, पर नहीं, वो भी गलत है, ना देर है ना अंधेर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है। वो अपनी कृपा के वश विवश हो जाते हैं उसको, उस व्यक्ति को जो पाप कर रहा है उसको सुधरने का मौका देने के लिए कि ठीक है पाप हो गया, ठीक है अभी भी सुधर जाओ, मौका देते हैं सुधरने का, और कुछ नहीं है। मारने को तो उसी समय मार सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, मौका देते हैं, हमें भी मौका दे रहे हैं सुधरने का। हम लोगों ने भी पाप किए, पाप नहीं किए होते, कई बार लोग इस बात को लेके बड़ा ऑफेंस फील करते हैं, हम जब कहते हैं सबने पाप किए पाप नहीं किए होते तो इस पृथ्वी पर इस भौतिक जगत में जन्म लेकर नहीं आए होते, सीधी सी बात है। इस भौतिक जगत में हैं, फंसे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और खासकर कलयुग में जन्म लिया, पाप किए हैं, पक्की बात। ठीक है कुछ पुण्य कर्म भी हैं, तक भी मनुष्य योनि में जन्म मिला है, भारत भूमि में जन्म मिला है, भक्तों के संग में आने का मौका मिला है, कुछ पुण्य कर्म भी है, पर कष्ट पा रहे हैं तो पाप तो किए हैं, पक्की बात। और इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कष्ट नहीं पा रहा, एक भी नहीं है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या कहीं पे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, सब सब लोग कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान जो है बस हमें मौका देते हैं कृपा करके कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी इस जन्म में भी हम पाप करते आ रहे हैं और पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, थोड़ा बहुत भोग रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी किया है तो कभी आगे जाके भोगेंगे, फिर भी भगवान कृपा करते सुधर जाओ, छोड़ दो, अब भी मेरी शरण में आ जाओ। और 18वें अध्याय में कहते भी हैं, मेरी शरण में आओ हम तो हम सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुचा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत। अर्जुन से नहीं कह रहे, अर्जुन तो भगवान के साथ ही हैं, अर्जुन तो पूरी तरह शरणागत है, ये हमारे लिए कह रहे कि अब तो कम से कम अब तो हम उनकी शरण में जाएं, फिर भी ये हम नहीं जाना चाहते, बिना भगवान की कृपा से ना तो ये शरीर हो सकता है, भूमि राप जल अग्नि वायु सब उन्हीं से आता है, सूर्य की रोशनी भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी, वनस्पतियां नहीं होंगी, फल नहीं होगा, इस शरीर को चलाने की शक्ति भी नहीं होगी अगर भगवान की कृपा ना हो, बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते अगर बुद्धि भगवान ना दे, अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते अगर भगवान बुद्धि ना दे, भगवान ये क्षमता ना दे, पौरुषम नरेशु मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, अगर भगवान ने कुछ ना दे हम कर क्या सकते हैं, जीव कर क्या सकता है, जीवात्मा जो है बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा, ये साइज बताया गया है, शरीर बड़ा छोटा हो सकता है पर जीवात्मा का साइज जो है इतना छोटा है, तो इतना छोटा सा एक पॉइंट जो है, पॉइंट से भी बहुत छोटा, कर क्या सकता है, पर हमारी दिक्कत यह, हम समझते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दानव था, इतना पूरे पूरे ब्रह्मांड में उसने अपना आतंक फैला रखा था, अभी तक के आजकल के आतंकवादी हैं एक दो गली मोहल्ले में एक थोड़ी सी जगह में अपना आतंक फैला लेते हैं, हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाया हुआ था, सबको दुखी किया हुआ था, पर वो पूरा ब्रह्मांड उसके पास था फिर भी वो खुश नहीं था, क्यों? एक तो अपनी कामनाओं के वश में था, वो उसको चैन नहीं लेने दे रही थी, दूसरा उसका 5 साल का लड़का उससे नहीं डर रहा था, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और हिरण्यकश्यपु से नहीं डर रहे थे, इस वजह से वो खुश नहीं था हिरण्यकश्यपु। और उससे प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, नरसिंहदेव भगवान जब आए, जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मारा, तो एक जैसे एक पुराण में बताया गया है कि जब उन्होंने अपने अपने गोद में हिरण्यकश्यपु को रखा और उसका जो अंतड़ियां फाड़ दी अपने नाखूनों से, तो इतने गुस्से में थे जब फाड़ दिया तो देख रहे अरे कहां गया कुछ भी नहीं था, कहां गया, गायब। फिर अपने नाखून जो झटके तो देखा नाखूनों के बीच में अटका हुआ था, ये साइज था उसका, क्या है भगवान के सामने। जब हम गाते ना अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकश्यपु, तो जब उसको फाड़ दिया तो नाखूनों के बीच में आ गया था, इतना छोटा हो गया था, ये है हमारी क्या औकात है भगवान के सामने, हम कुछ भी नहीं है। यही पोजीशन हमें अपनी समझनी है, हमेशा यही पोजीशन याद रखनी है। इसलिए बताया गया भगवान के सामने जब आते हैं प्रणाम, पहली चीज होती है प्रणाम करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए कि मैं भगवान आपकी शरण में हूं, आपके सामने कुछ नहीं हूं, आपके चरण कमल की धूलि का एक कण भी नहीं हूं। तब हम जो है शरणागत होंगे, तब भगवान की शरण में जा सकते हैं, जब माने भगवान ही सर्वे सर्वा है। हम कुछ नहीं है। जब तक हमारे साथ ये उपाधियां जुड़ी रहती हैं कि मैं ये बिजनेसमैन हूं, मैं ये नौकरी वाला हूं, मैं ये साइंटिस्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्या हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं प्रोप्राइटर हूं, ये हूं, वो हूं, जब तक ये हमारे साथ उपाधियां जुड़ी रहेंगी भगवान की शरण में नहीं जा सकते। और ये उपाधियां सिर्फ शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ ही समय के लिए हैं, और ये मिली भी किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। जब तक ये जुड़ी हैं, जब तक हम इन सबसे अपने आप को अलग नहीं समझ रहे, भगवान की शरण में नहीं जा सकते। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास ये जो कुछ भी है भगवान की कृपा से ही है, और कृपा से है तो उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए, तब तो ठीक है। तो भक्तों का यही भाव रहता है, भगवान मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। यही भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं अपने एक भजन में, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। अपनी अयोग्यता के बारे में अगर मैं विचार करता हूं तो कुछ नहीं है मेरे में, सिर्फ तुम्हारी करुणा है बस, और कोई योग्यता है नहीं मेरे में। और जब हम इस धरातल पर, इस स्तर पर पहुंचेंगे, तभी भगवान की शरण ले सकते हैं और तभी भगवान के धाम जाने का रास्ता जो है खुलेगा। असुरों में और भक्तों में यही एक फर्क है। भगवान आगे अध्याय में एक जगह बताते हैं आसुर को दैविक लक्षण, उसमें बस यही बताया कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जो है दो ही प्रकार के जीव हैं, या असुर हैं या भक्त हैं, तीसरा कोई नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो हम असुर हैं, सीधी सी बात है। वो ग्रे शेड नहीं है इसमें कोई कि नहीं हम वहां भी नहीं, हम यानी हम इग्नोरेंट हैं, हम न्यूट्रल हैं, ऐसा कुछ नहीं। या तो शरणागत है या नहीं है। तो फर्क यही है भक्तों में असुर। असुर जो है भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान के सामने, भगवान के समक्ष शरणागत नहीं होते। भक्त जो है शरणागत हो जाते हैं, बस ये फर्क है। असुर जो है सोचते हैं मैंने अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से ये सब कुछ कमाया है, अभी मैं आगे और भी कमाऊंगा, मैं कुछ यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और फिर उस जो पुण्य कर्म मिलेंगे उसे और कमाऊंगा, उसे और एंजॉय करूंगा। ये आसुरिक प्रवृत्ति है, ये हम सब में है। कोई भी है जो अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस से एकदम सेटिस्फाइड हो कि नहीं अब मैंने बहुत कमा लिया अब ठीक है? ये जो दिल्ली में जिसको रश आवर ट्रैफिक कहते हैं, रश आवर पता नहीं रश आवर क्यों बोलते, लोग भाग तो सकते नहीं, इतना ट्रैफिक होता है गाड़ी तो चलती भी नहीं है। रश आवर बोलते हैं उस समय जो ट्रैफिक होता है, वो किस वजह से होता है? कोई कीर्तन करने के लिए तो नहीं जा रहे, भागवत कथा करने तो जा नहीं रहे सारे के सारे। रशिया ट्रैफिक इसलिए ना कि ज्यादा पैसा कमाना है, उस समय जाएंगे तो अच्छा बिजनेस मिलेगा, या उस समय काम पे जाने का समय है, काम पे जाएंगे तो बिजनेस या पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए तो है। और कितनी गाड़ियां होती हैं उस समय, लोग जो है देखो, अगर तो एसी कार है तब तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, अगर एसी गाड़ी नहीं है ऑटो में जा रहा है, सारा धुआं भी अंदर ले रहा है, अपनी तबीयत भी खराब कर रहा है, एसी गाड़ी में भी बैठा है अगर रशा ट्रैफिक में है तो गाड़ी रुक गई है, हॉर्न बजा रहा है, गालियां दे रहा है, कई लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किस लिए? ताकि थोड़ा सा पैसा कमाऊं जाके, अगर मैं लेट हो गया तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा। लेट हो गया तो कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, फिर बॉस की डांट पड़ेगी, या जो भी होगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि पैसा उतना नहीं आएगा जितना मैं चाहता हूं, अल्टीमेटली यही चीज है और कुछ नहीं है। कोई प्रोजेक्ट से किसी का लगाव नहीं होता। पैसे से लगाव। तो कोई भी जो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है कि ठीक है जितना हेट है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, भाग रहे हैं पैसे के पीछे। और फिर कहते क्या कि मेरी वजह से मैंने ये सब कमाया, ऊपर ऊपर से कहते हैं ये भगवान की कृपा है जी, अंदर से नहीं मानता कोई। क्योंकि रोज वो करते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मानता थोड़ी है कोई इसको, कहने में क्या जा रहा है। कैलेंडर पे लिखा होता है, आरती लिखी है, कहने में क्या जा रहा है, चलता है भगवान ने कौन सा आके छीनना, कौन सा पूछ रहे हैं? नहीं भाई, एक तरफ तो कह रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर दूसरे कह रहे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, दोनों चीजें बैठती नहीं है आपस में। जैसे एक बार, थोड़ा समय कम रह गया, एक बार किसी ने पूछा, मतलब हिंदू ब्राह्मण को, एक ईसाई के पादरी को और एक मस्जिद के इमाम को, तीनों को खड़ा किया, पूछा कि भाई जो आपके मंदिर में मस्जिद में चर्च में जो पैसा आता है, दक्षिणा आती है, उसका कैसे करते हो, कि कितना भगवान की सेवा में लगना चाहिए, कितना आपकी मेंटेनेंस के लिए? तो मस्जिद में पूछा तो इमाम ने कहा हमारा तो बड़ा सिंपल है कि भाई 10% जो है हम अपनी सेवा में लगाते हैं, बाकी मस्जिद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चर्च वालों से पूछा, बोले हमारा 50-50 होता। मंदिर में पंडित जी से पूछा, भाई आप कैसे, कहते हमारा तो और सिंपल है। क्या सिंपल है? कि हम जी जितना पैसा आता है उसको हवा में उछालते, भगवान से कहते जितना आपको रखना रख लो, बाकी दे दो। तो सिंपल तरीका जी हमारा तो। तो यही हम सब का भी हिसाब किताब है, यही हाल है हमारा। क्यों हम ये समझते हैं? क्योंकि ये मेरी वजह से आया तो मैंने इसको एंजॉय करना है। ठीक है, मंदिर जाएंगे तो पहले 125 रुपए का प्रसाद चढ़ता था, आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। हम जब बच्चे थे तो 125 रुपए का चढ़ाते थे, वो बूंदी या थोड़ा हलवा या बर्फी चढ़ा देते थे। आजकल थोड़ा ज्यादा होगा, बस वो चढ़ा दिया, खुश हो गए, भगवान खुश हैं जी, ठीक है। नहीं, उसके लिए हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब कुछ भगवान के द्वारा ही दिया गया है, भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, भगवान की कृपा से हम जो कुछ कर पा रहे हैं उनकी कृपा से कर पा रहे हैं, और जो जो भी है उनकी ही सेवा में लगना चाहिए, तब जो है हम खुश रह पाएंगे, सफल होंगे, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवान को पाना है वो हम कर पाएंगे। नहीं तो फिर इस भौतिक जगत में फिर से आना पड़ेगा, फिर जो है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस सब से गुजरना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है ये जो कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें चैतन्य महाप्रभु कृपा से मिला है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैंने माया की इस शरीर की बहुत सेवा कर ली, अब जो है कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ताकि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकूं। ठीक है, तो अब 5 मिनट रह गए हैं, किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। हां जी माता जी, जैसे लैपटॉप होता है ना, ये कंप्यूटर होता है, सारे लैपटॉप एक से होते हैं। मान लो एचपी का लैपटॉप लिया तो सारे लैपटॉप एक से हैं, पर जिसको ज्यादा अच्छे से चलाना आता है वो उसको ज्यादा से अच्छे से चला पाएगा, लैपटॉप में कोई कमी नहीं है। तो उसी तरह मन बुद्धि और अहंकार हमारा, ये सूक्ष्म शरीर जो है हर जन्म में हमारे साथ रहता है, तो बुद्धि वही है, अब हमारे कर्मों के ऊपर है कि हम उसको कितना यूज कर सकते हैं। तो भगवान बुद्धि देते हैं, हाँ ठीक है, पर तो हमारी इच्छा हमारे कर्मों के ऊपर है, हम कितना यूज कर सकते हैं। भक्ति करेंगे तो कर्म जो है खत्म होते जाते हैं, हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्धि कम नहीं होती है, कर्मों की वजह से उसको कम इस्तेमाल कर पाते हैं, ये फर्क है, उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके पाप कर्म कुछ ज्यादा है इस वजह से। हां जी प्रभु जी, थोड़ी आवाज कम आ रही है, टेक्निकल एडवांटेज सुना बस, बाकी कुछ नहीं सुना। कोई बता सकता है थोड़ा जोर से, रुकावट आती है? नहीं, रुकावट है, डिपेंड्स हम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी हम एसी ऑडिटोरियम बैठे हैं, माइक है, सब कुछ है, अगर हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं है। ऑस्टेरिटी खत्म है कलयुग में, तो ऑस्टेरिटी कर ही नहीं सकते हैं। कलयुग में यही ऑस्टेरिटी है, मंदिर आके भगवान का कीर्तन कर ले, और इसी के लिए इस्कॉन जो है बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, अब एसी भी लगा हुआ है मंदिर में, कि गर्मी लगती है ठीक है हम एसी लगा के देते हैं, कम से कम अब तो आके कीर्तन करो। हम तो वो भी नहीं कहते। मार्बल लगा रखा है कि भाई ठीक है, कंक्रीट फ्लोर पे नहीं बैठना, मार्बल वाले फ्लोर पे बैठो, भूख लगती है तो गोविंदा से है। ये नहीं कि सिर्फ खिचड़ी खाओ, गोविंदा से खा सकते हैं, पर कम से कम आओ तो सही। अगर यहां पे अभी एसी नहीं होता, पंखा नहीं होता, तो कितने लोग इस हॉल में बैठे होते, फिर भी सीट्स खाली है। अरे भाई एयर कंडीशन इतनी अच्छी सीट्स हैं, ये भी नहीं कि नीचे बिठा रखा है, कम से कम अब तो आओ। पर हम लोग ऐसे हैं, ढीठ हैं, फिर भी नहीं आना चाहते। यस प्रभु, ती है, और जिसको देखना है वो देख सकता है कि हर जगह भगवान है, पर भगवान का एक स्वरूप भी है अपने धाम में, गोलोक धाम में श्याम सुंदर रूप में है, पर अपनी शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त है। पर जो देखने वाला देख सकता है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं देख सकता हूं कि इस ये भी पंच तत्व से बना है, भूमि आप भूमि पानी अग्नि वायु आकाश से, तो ये किससे आया? भगवान से आया। भगवान कह रहे हैं गीता, ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं, तो ये भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है, फर्क है, पर है भगवान की शक्ति। रिलेशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड। ब्रह्म संहिता में बताया गया, अनादर आदर गोविंदा, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई सोर्स नहीं है, और जो सबके सोर्स है वो गोविंद है। तो भगवान का कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान सबके क्रिएटर है, उनका कोई सोर्स नहीं है, वो सबके सोर्स है, तो वो भगवान। ये आपके सारे आंसर ना साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में दिए हैं, जो किताब मैंने आपको कही थी, तो इसको पढ़ेंगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे। ये शिव महापुराण में लिखा है डायनासोर के बारे में, उम्मीद कम है वैसे आज चलती। गॉन वेयर, नहीं 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 नहीं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका आंसर थोड़ा लंबा है, तो सबके पास समय है कि मैं दूं क्या? प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 28वां कलयुग चल रहा है, शिव महापुराण में पढ़ा है, और इसके बाद जो है फिर सब विनाश हो जाएगा, सत्ययुग आएगा, फिर क्रिएशन शुरू होगी। तो 28वां कलयुग ठीक सुना है, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हैं, हर मनु जो है रूल करता है 71 चतुर्युग तक। एक युग चतुर्युग हुआ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो 71 ऐसी साइकल्स चलती हैं एक मनु के शासन काल में। ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में। और ये जो 28वां कलयुग आप कह रहे हैं, ये 7वें मनु का 28वां कलयुग है। इससे पहले 6 मनु हो चुके हैं, ये 7वां है, और इसके बाद 7 मनु और होंगे, और तब ब्रह्मा जी की शाम होगी, ब्रह्मा जी के दिन की शाम होगी, तब जो है छोटी प्रलय आएगी। और ऐसे जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, तब ये ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। और ये ब्रह्मांड का विनाश, ब्रह्मांड जो डिसोल्यूट हो जाता है, ये महाविष्णु एक सांस लेते हैं अंदर तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी के 100 साल महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। तब शिव पुराण में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि महाविष्णु की पिछली सांस में क्या हुआ था, अगली सांस में क्या होने वाला है। ये श्रीमद् भागवतम में अच्छे से बताया गया। तो इस तरह ब्रह्मांड चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हम एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी के 100 साल तक डिपेंड। अगर हमने भक्ति नहीं की है तो अपने कर्मों के फल के रूप में कभी किसी ब्रह्मांड में, किसी प्लेनेट पर, फिर कभी किसी प्लेनेट पर, किसी योनि में, किसी योनि में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सी, एक क्वेश्चन होता है माइट वी, माइट वी मतलब आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। तो दूसरा है जानना चाहता हूं कि वो कौन है। तो शास्त्रों में जो बताया गया, जैसे बताया ना, महाविष्णु की एक सांस से सारे ब्रह्मांड अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, और एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य। महाविष्णु का क्रिएशन किसने किया? महाविष्णु जो है कृष्ण के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। तो ओरिजिनल जो है कृष्ण है, कृष्ण ओरिजिनल है, सबके स्रोत हैं, और ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया है और शास्त्र में बताया है, उनका कोई स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने क्रिएट किया है, अगर उनको किसी ने क्रिएट किया तो वो उनसे बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं से आए, मतलब ये आकाश खाली पड़ा था, ब्रह्मा भगवान कहीं से आए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। सब कुछ भगवान से आता है, उनकी शक्तियां हैं। और एक जगह ऐसा भी लिखा है, जब तक हम ये नहीं समझ में आते कि भगवान अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल हैं, वी कैन नॉट कंसीव हिम। He does not come from anywhere. He is always there. Everything comes from him. Okay. एक और मैं उदाहरण देता हूं। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, मुझ में और भगवान में बड़ा कौन है? तो बीरबल ने कहा, आप हैं। अकबर भी कहता, अरे ये क्या बोल रहा है। तो अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से निकाल सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। क्योंकि उनके राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं। कहां निकालेंगे क्या? सब कुछ तो उनके राज्य में है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के अलावा और कुछ है। हम समझते हैं, जैसे मतलब अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, तो इसके बाहर भी कुछ है, इंडिया के बाहर भी कुछ है। जहां की मनमोहन सिंह का राज, क्या मनमोहन सिंह का राज यहां भी नहीं चलता, वो बात अलग है वो चीज अलग है खैर, पर ऐसा भगवान के साथ नहीं है, और कुछ है ही नहीं उनके क्रिएशन के अलावा। थोड़ा मुश्किल है समझना, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, क्योंकि हमारे जो बुद्धि है कुछ कुछ दायरों में लिमिटेड है, उसके बाहर नहीं समझ सकते। उसके बाहर समझना है तो शास्त्रों के द्वारा ही समझ सकते। माता जी आपका कुछ कमेंट था? जीव की इच्छा से उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति तो भगवान ने की, क्योंकि ऐसा कोई भगवद गीता में बताया गया ऐसा कोई समय नहीं था जब जीव नहीं था, हमेशा है। पर जीव की उत्पत्ति हुई है भगवान की सेवा के लिए। अब उसकी इच्छा है सेवा नहीं करने की, तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। उत्पत्ति ईश्वर ने की है, पर इच्छा की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की है। इच्छा जीव की अपनी है, हमारी इच्छा है तो भगवान उसको पूरी करते हैं। जैसे आपकी इच्छा थी आज क्लास में आने की, आप आ गए, बाकी लोगों की नहीं थी वो नहीं आए। प्रहलाद को क्या? वो जब माता के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, कयाधु जो माता थी उनकी, तो नारद मुनि की कृपा हुई थी, नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया था, कयाधु को दिया था, और गर्भ में प्रहलाद महाराज थे तो उन्होंने सारा ज्ञान सुना था, तो उस संगत की वजह से वो भक्त बन गए थे।
तो उनका कोई संस्कार या कोई वो ऐसा नहीं था कि
संस्कार, गर्भ में ही संस्कार मिल गया ना नारद मुनि की कृपा से।
संस्कार तो पिता से मिलता है ना,
पिता से गर्व मिलता है हाँ, पर एसोसिएशन अच्छी हो तो वो संस्कार भी ले सकते हैं। जैसे अब हम सभी हैं, हम भी, हमारे भी घर में तो कोई भक्त है नहीं, पर प्रभुपाद जी की कृपा से और प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से वो संस्कार अब मिल रहे हैं, जिससे भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर भक्त के घर नहीं पैदा हुए तो भक्त नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भक्तों की कृपा से सब संभव है। एक मिनट, इधर से कोई प्रश्न था? ओके यस।
जैसे दुर्योधन के अंदर बल जो था वो गलत के लिए था, और जो अर्जुन के अंदर बल था वो सही के लिए था, तो एक तरफ भगवान गलत का साथ दे, एक तरफ सही का।
नहीं, इसमें लिखा काम और वासना से रहित, काम राग विवर्जितम, वो बल मैं हूं।
मतलब जो गलत का बल था, जो दुर्योधन का बल था, वो नहीं थे क्या?
वो नहीं थे, वो बल नहीं थे, पर जो दुर्योधन में काम करने की शक्ति जो है वो तो भगवान ही देते हैं ना, और शक्ति का दुरुपयोग हम करते हैं, इस वजह से हम फंस जाते हैं। प्रॉब्लम इस बात में आना सब भगवान से है, क्योंकि उनके अलावा कहीं से आ नहीं सकता, पर वो सदुपयोग या दुरुपयोग करने की इच्छा जो है वो हमारी होती है। जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें मिली है, वो यही है, हम इच्छा क्या करते हैं। बाकी सैंक्शनिंग भी वहीं से होनी है, परमात्मा ही सैंक्शन करेंगे। एबिलिटी भी भगवान देते हैं, सैंक्शनिंग भी वही करते हैं, इच्छा हमारी होती है, और फंस हम उस वजह से जाते हैं, उसकी वजह से हमें कर्मफल भोगना पड़ता है। और इच्छा अगर अपनी ठीक रखनी है तो भक्तों के संग में आना बहुत जरूरी है, एसोसिएशन, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा, तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और एसोसिएशन के लिए डेली जो है भगवद गीता पढ़ी जाए, चैंटिंग की जाए, भक्तों के संग में आए, मंदिर में आए, सेवा करें। जैसे किसी शराबी को भी अगर अच्छा शराबी बनना है तो शराबियों की संगत करनी पड़ेगी, अकेले घर बैठ के नहीं बन सकता शराबी। तो अगर भक्त ही बनना है तो भक्तों की संगत करनी पड़ेगी। अब सारा है हमारी इच्छा पे, हमारी इच्छा क्या है तो भगवान फिर वैसे ही एसोसिएशन में लेके जाएंगे। और फिर अगर ठीक एसोसिएशन में आए फिर हमारी इच्छा जो है और स्ट्रांग और प्रबल होती जाती है, फिर हम उसी एसोसिएशन में रहना पसंद करते हैं, कहीं और जाना नहीं चाहते। वो है फिर भी हमारी इच्छा पे सारा कुछ।
प्रभु जी अगर भगवान क्या कि हम कोई इच्छा रखे ही ना तो क्या हम इन सब चीजों से बच जाएंगे?
नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना, इच्छा हो खत्म हो सकती है बस पत्थर में। जीव के साथ इच्छा तो चलेगी, इच्छा ना रखना भी एक इच्छा है। हमारी इच्छा की कोई इच्छा नहीं चाहिए तो वो भी तो एक इच्छा है ना। ये तो जीव का एक स्वभाव है, तो वो इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की, तो भगवान उसमें जोड़ेंगे। नहीं होगी कुछ और करने की इच्छा तो भगवान वहां लेके जाएंगे। तो ये परमात्मा का काम है ना, सैंक्शन करना और विटनेस करना।
हाँ जी प्रश्न और पूछ सकती हूँ? परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या गुरु धारण?
सहस्रनेत्र प्रभु के ऊपर है, सवा नौ हो रहा है वैसे, क्योंकि आपने ज्यादा प्रश्न किया तो फिर अगले 6 महीने तक मैं ब्लैकलिस्टेड हो जाऊंगा, फिर बोलने का अवसर नहीं मिल। मैं ज्यादा लेट कर देता हूँ। हाँ जी आखिरी प्रश्न कह रहे हैं,
परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या गुरु धारण आवश्यक है?
अच्छा पहले इसका आंसर बड़ा लंबा होने वाला है। पहली बात तो यह, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। दोनों में फर्क है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं जो साक्षी हैं और सैंक्शनिंग करते हैं, हमें भगवान जो गोलोक धाम में है उनकी सेवा की प्राप्ति, उनकी सेवा चाहिए। दोनों में फर्क है एक ही व्यक्ति पर दोनों के कार्य अलग अलग हैं। और फिर गुरु धारण, गुरु धारण करने का मतलब क्या, हम तो कपड़े धारण करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। पंजाब में ज्यादा बोलते हैं गुरु धारण किए, पर वो गलत शब्द है। गुरु की सेवा करनी है। हाँ बिना गुरु की सेवा के, बिना गुरु के सरेंडर हुए, उनकी बिना उनके निर्देशों का पालन किए भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमने मान लो इंजीनियरिंग भी करनी है तो सारी किताबें तो खाड़ी बावली में मिलती हैं, वहां से लेके क्यों नहीं इंजीनियर बन जाते? पढ़ने के लिए किसी के पास तो जाना पड़े, कॉलेज में जाके गुरु टीचर के पास जाके पढ़नी पड़ती है, वो सिखाता है तभी हम इंजीनियर या डॉक्टर बन पाते हैं। तो जब मटेरियल वर्ल्ड में हमें एक गुरु की आवश्यकता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। जो हमें ठीक से समझा सकता है,
आप भी जैसे गुरु ही हैं।
हैं जी?
आप भी गुरु ही हैं?
नहीं मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु का दास हूं, सेवक हूं। गुरु इस्कॉन में है, बहुत सारे हैं, दीक्षा गुरु जिनको कहते हैं। गुरु भी वैसे 3 प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु। तो दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु के ही हो सकते हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग व्यक्तियों से, पर दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है हम किसी सही दीक्षा गुरु के पास जाके दीक्षा लें और तब भगवान के पास जाने का रास्ता जो है खुल जाता है। हरे कृष्ण। तो यही विराम दें।